नाम कर्म की प्रकृतियां निरामिष रूप से जारी से गति जाति श्री राम के काम निर्माण बंधन संघात संस्थान सौम्य स्पर्श स्थान पूर्या मूल रघु सुघात कर घाता तपोत्योपेक्षास विहायु गतिया प्रत्येक श्री प्रसु सूक्ष्म परमाप्ति स्थान दे यशा कीर्ति से त्राणी तीर्थ कर पहुंचा। गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, गति नाम कर्म चार प्रकार का हो जाएगा, जाति नाम कर्म पांच प्रकार का, एक इंद्रिय आदि शरीर नाम कर्म के अगर देखा जाए तो शरीर नाम कर्म शरीर जो है वो पांच प्रकार के हो जाते हैं, औदारिक व्यक्ति कारक तेजस और कारण शरीर तो पांच भेद हो जाते हैं, अंग पांच तीन प्रकार के होते हैं, निर्माण ये पांचवा जो शरीर है उनका निर्माण, बंधन पांच प्रकार का बंधन, संघात भी पांच प्रकार का संघात, संस्थान छह होते हैं, सहन छह होते हैं, स्पर्श आठ प्रकार का स्पर्श होता है, रस रस पांच प्रकार के होते हैं, गंध दो प्रकार की होती है, वर्ण वर्ण मतलब कलर वो भी पांच प्रकार के होते हैं, अनुपुर भी चार प्रकार की होती है, चारों गतियों में जाने के लिए, और अमूर्ण को एक गुण है जिसको आवृत करने वाला अभिगु कर्म है, उपघात आघात आपक नाम कर्म उद्योग नाम कर्म उच्छ्वास नाम कर्म विहायु गति प्रशस्त और प्रशस्त दोनों प्रकार की विहायु गति होती है, प्रत्येक शरीर त्रस नाम कर्म है, सुभग है सुश्वर है शुभ नाम कर्म है, सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदि यशो कीर्ति ये इसमें क्या है जो प्रत्येक शरीर है तो उससे विपरीत साधारण शरीर है, त्रस है तो उससे विपरीत स्थावर शरीर है, सुभग है तो दुर्भग भी है, सुश्वर है दुश्वर भी है, शुभ है तो अशुभ भी है, सूक्ष्म है तो स्थूल है, पर्याप्ति है तो पर्याप्त है, स्थिर है तो अस्थिर है, आदेय है तो अनादेय भी है, यश कीर्ति है तो अयश कीर्ति के प्रतिपक्षी भी है, इस तरह से जो है सेत्राणी से उन्होंने प्रतिपक्षी ले लिया है, गिनाए नहीं है वो अपने को स्वयं गिनना पड़ना ही पड़ेंगे, इस तरह से ये और तीर्थकर तीर्थंकर तीर्थंकर भी नाम कर्म है, वो एक कर्म प्रपत्ति है, इस तरह से 42 भी और उनके एक प्रभेद करेंगे तो 93 हो जाएंगे, उच्च नीचेश्च गोत्र कर्म दो प्रकार का उच्च गोत्र और नीच गोत्र, अंतराय कर्म के पांच भेद है, दान लाभ भोगोपयोग क्रियानिच धनांतराय लाभ अंतराय भोगांतराय भोगांतराय वीर्यांतराय, ये पांच अंतराय के वेद होने की डेफिनेशन प्रकृति बंध के भेद तो बता दिए, अब स्थिति बंध के भेद बता रहे हैं, ये तो सब प्रकृति हो गई, अब स्थिति किसकी कितनी बढ़ती है तो उत्कृष्ट और जघन्य दो प्रकार की स्थिति मध्यम तो बढ़ती है पर चर्चा उत्कृष्ट और जघन्य की करते हैं, तो पहले कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं, दृश्यमान अंतरायश्चत्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परास्थित, उत्कृष्ट स्थिति जो है आदि के तीन ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनी और उसमें अंतरायश्च और अंतराय कर्म, इन सबकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर में, ये स्थिति जो है वो किसको होगी तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त विध्या दृष्टि जीव के ही होगी, मौन कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सप्तर्मौन सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर मौन कर्म की होती सर्वाधिक होती है, ये भी जो है संगी पंचेंद्री पर्याप्त विध्या दृष्टि को ही बंधेगी, नाम और गोत्र की तो विंशतिर नाम गोत्र, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, ये उत्कृष्ट स्थिति भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त विध्या दृष्टि को ही बंधेगी, आयु कर्म अधिकतम बंधेगा तो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानी आयुषा, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की बनती है, सर्वांश सिद्धि की बनेगी मंदिर की बंधेगी, ये भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त कोई बनती है, अपराध आदेश विधानता वेदनीय, अब जो है जघन्य स्थिति बता रहे हैं कि वेदना कर्म की जगह में स्थिति बाहर बारह मूर्त है, ये जबकि दसवें स्थान में बनती है, सबको नहीं बनती है। क्योंकि अल्प स्थिति के लिए विशुद्धि ज्यादा चाहिए। नाम और गोत्र के लिए नाम गोत्र अरस्तु, नाम और गोत्र कर्म की जगह में स्थिति सिर्फ आठ मूर्त की बनती है, ये भी दसवें स्थान में बनती है। शेष जो पांच कर्म है उनकी जगह में स्थिति शेषा अंतर मुहूर्ता, एक मात्र अंतर मुहूर्त की स्थिति जगह में अगर बंधेगी तो होती बनती बिफोर उसके पहले पहले तो बहुत हो जाती है। 48 अंतर मुहूर्त बहुत प्रकार का है, एक अवली और एक समय से लेकर के 48 मिनट तक अंतर होती है। मौन की जगह में स्थिति तो नौवें स्थान में बनती है, आयु की जगह में स्थिति संख्यात वर्ष वाली आयु वाली मनुष्य तिरंजों को बनती है। शेष तीन कर्म की जगह में स्थिति दसवें स्थान में जाके बनती है। इस प्रकार से इन्होंने जो है इनके स्थिति बंध को भी कह दिए। अब अनुभाग को कहते हैं, तो कहते कृपा को अनुभाग वो जो नाना प्रकार का पाक या मन में आना कर्मों का वो विपाक कहलाता है, उसी को हम जो है अनुभव भी कहते हैं। सर्वथा नाम और कर्म को अनुभव कैसा होता है, कहते अपने नाम के अनुसार, जैसा जिस कर्म का नाम है वैसे ज्ञानावरण का फल ज्ञान की शक्ति को ढाकने रूप है, दर्शनावरण का दर्शन की शक्ति को ढाकने रूप है, इस तरह से जो है। और फिर तपस्या जरा, और जब कोई भी कर्म अपना फल दे चुकता है तो वो नष्ट हो जाता है। फल दे चुकने के बाद कर्म की निद्रा हो जाती है, स्थिति पूरी होने के बाद उसी को निद्रा कहते हैं। फिर कह रहे हैं प्रदेश बंध क्या चीज है, तो नाम प्रत्या सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थित सर्वात्म प्रदेश अनंत प्रदेश, ये प्रदेश बंध है। इसमें छह विशेषताएं बताई हैं। कर्म प्रदेश किसके कारण है, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, बनने का भी रहते कहाँ है, उनका परिणाम कितना होता है, क्वांटिटी कितनी होती है, इसके उत्तर में लिखा हुआ है ये अलग अलग। तो कहना है कि ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के कारण है, वे कर्म कर्म प्रदेश नाम नाम प्रत्यय इस तरह से जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही आयु को छोड़ करके जो सात कर्म है वो उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बनने के साथ ही, जिस जैसा जैसा जिसका नाम है। कहते तो क्वांटिटी एक साथ है पर उसमें डिवाइडेशन कब बनते हैं, हर एक भाव में बनते हैं, ऐसा कोई बंध नहीं है, ऐसा कोई क्षण भी नहीं है जिसमें कर्म बंध न होता हो। और कैसे बनते हैं, तो कहते योग विशेषात जैसा मन वचन का कमित मिलेगा वैसे बनेंगे, और वे कर्मों के लिए बंधन का निमित्त है। उनका स्वभाव कैसा है, तो कहते सूक्ष्म है, कर्म वर्तना है सूक्ष्म दिया है। और कहाँ पर बनती है, किस आधार से बनती है, तो किसी भी एक भाग में नहीं बनते हैं, एक क्षेत्र का स्थित इसको उन्होंने जो है जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पर कर्म के प्रदेश भी है। इस तरह से एक क्षेत्र अवगाह होकर के रहते हैं और सभी आत्मा के प्रदेशों सर्वात्म प्रदेश और क्वांटिटी लिखती रहती तो अनंत अनंत प्रदेश। इस तरह से इस सूत्र में इन्होंने छह बातों के उनको लेकर के उन कर्म बंध के प्रदेश बंध की छह विशेषताएं वेदों की इस तरह से बनता है। कैसे किस नाम वाले प्रदेश बनेंगे, तो कहते कॉमन है जिन्हें में नाम डिसाइड हो जाएगा, उसी तरह की ज्ञानवरण को इतना जाना है, प्रदेश दर्शनवरण को इतना जाना है, फिर हर समय बनती रहती प्रति समय, इसलिए सर्वता दे दिया। तो बनते कैसे हैं, कहते मन वचन का एक ही विषय वैसे मन वचन का एक ही प्रक्रिया होगी वैसे बनेंगे, और बहुत सूक्ष्म होगी उनकी क्वालिटी होगी, और एक क्षेत्र अवगा स्थित है जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं स्थित है, कहीं से आके नहीं बनेंगे, वहीं के वहीं आत्मा के साथ इंटरमीडिएट मिलन हो जाते हैं। और कहाँ बनते हैं, तो किसी एक जगह नहीं बनते हैं, आत्मा के सर्व आप प्रदेशों पर बनते हैं, और मात्रा कितनी होती तो अनंत अनंत प्रदेश। इस तरह से ये प्रदेश बनने की प्रक्रिया बता दी। हम देखा संवेद स्वभाव नाम गोत्राणी ब्रह्म, कर्मों के जो गुण प्रकृति है वो है साता वेदी, और तीन आयुषो है तिरंजायु मनुष्य और देवल, और गोत्र उसमें उच्च गोत्र शुभ है,
बताइए
कोई भी आयुष इसलिए कहलाती है क्योंकि वहां जाकर के जीव फिर मरना नहीं चाहता, इसलिए शुभ है। लेकिन नरक आयु शुभ नहीं है, वहां जाकर जीव तो मरना चाहता है, इसलिए ये उसका आंसर है। उच्च गोत्र और नामकरण की 47 प्रकृतियां, ये जो है इतनी पुण्य प्रकृतियां हैं, और अपुण्य पापम जो शेष बस्ती है ये सब पाप प्रकृतियां हैं। किस तरह से जो है तत्व सूत्र के 8वें अध्याय में ब्रह्म तत्व की चर्चा। अपन 9वें अध्याय में विशेष रूप से संवर और निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे। आश्रम विरोधा संवर, नए कर्मों के आने के जो कारण है उसे आश्रय कहते हैं, और उन आश्रय के रोकने को संवर कहते हैं। अब संवर दोनों तरह से होता है, एक तो भाव रूप में भी होता है, दूसरा द्रव रूप से होता है। तो जो क्रियाएं संसार में भटकाने में कारण बनती हैं, उन क्रियाओं का अभाव हो जाना या उन भावों का अभाव हो जाना वो भाव संवर कहलाएगा। और उन भावों के द्वारा प्रभाव होने से जो पुद्गल कर्म आत्मा में आ रहे थे उनका आना रुक जाना वो द्रव संग्रह द्रव संवर कहलाएगा। अब इस संवर में क्या क्या हेतु बनते हैं, तो कह रहे हैं सवित्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय यह चारित्री है। वो संवर गुप्ति समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। गुप्ति किसे कहते हैं, जो संसार में भटकाने वाले राग द्वेष इत्यादि कारणों से आत्मा की रक्षा करें वो गुप्ति कहलाती है। और प्राणियों को जिससे कष्ट न पहुंचे ऐसी भावना से सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है वो समिति कहलाती है। और जो जीव को उत्तम सुख दिलावे वो धर्म कहलाता, सामान्य धर्म की परिभाषा ये है। और संसार शरीर और भोगों के बारे में उनकी वास्तविकता के बारे में बार बार जो चिंतन किया जाता वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। और भूख प्यास इत्यादि के से होने वाली जो शारीरिक क्लेश या कष्ट है उसको समतापूर्वक सहन करना ये परिचय विजय कहलाता है। और चारित्र तो कषाय के अभाव का नाम चारित्र है, या जिन क्रियाओं के द्वारा कर्म का बंध होता है उन क्रियाओं को छोड़ देना ये चारित्र है। अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ में प्रवृत्ति करना ये भी चारित्र है, या कि जितना जितना कषाय का अभाव होता है उतना उतना चारित्र बनता है। इस तरह से ये सब जो है वो संवर में कारण बनते हैं। फिर कहते हैं और भी क्या कुछ कारण है संवर के, तो कहते हैं तपसा निर्जराता, तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तप हालांकि 10 धर्मों में आ जाता है फिर भी तप का अलग से ग्रहण किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध कर देने रूप जो तप है उस तप के द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होती है। संवर से मैंने तप के द्वारा जो नए कर्म है उनका आना भी रुकता है, और जो पुराने बने हुए कर्म है उनकी निर्जरा भी होती है इस तरह से। अब जो है उन्होंने अपने तो परिभाषाएं सामान्य रूप से पढ़ ली, पर सूत्र में ही परिभाषाएं बना रहे हैं गुप्ति समिति इत्यादि की। सम्यक योग निग्रह गुप्ति, मन वचन का एक ही स्वेच्छा पूर्ण प्रवृत्ति को रोक देना ये गुप्ति कहलाती है। अशुभ में जाते हुए मन को रोक लेना ये मनोवृत्ति हो गई। अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होने वाले शरीर को वहां से रोक लेना काय वृत्ति हो गई। अशुभ वचन से बच जाना ये वचन वृत्ति हो गई। ये सामान्य परिभाषा है, विशेष रूप से अगर देखें तो मन में समस्त विचारों से रहे निर्विचार अवस्था का नाम निर्विकल्प होने का नाम वो है वृत्ति। और आपके समस्त प्रकार के वचन का त्याग करके मौन ग्रहण करना ये वचन वृत्ति है। उस समस्त शरीर की क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जो है पहले अशुभ से बचना और फिर समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो जाना ये मुक्ति लिखा हुआ है। ईरिया भाषा इसना दान निक्षेप उत्सर्गा समितया, ईरिया भाषा इसना दान निक्षेपण और उत्सर्ग ये 5 समितियां हैं। समिति की परिभाषा अपन पहले समझ चुके हैं। तो ईरिया समिति सूर्य का उदय हो जाने पर
जो चीजें हमें साफ साफ दिखाई देने लगे, उस समय चार हाथ आगे जमीन को देखकर और जीवों की रक्षा की भावना से जो गमन किया जाता है, प्रयोजन होने पर ही गमन किया जाता है, वो कहलाएगी हिरिया समिति। हितमित और प्रिय वचन बोलना ये भाषा समिति कहलाती है। मिथ्या वचन का उपयोग नहीं करेंगे, अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे, कषाय से युक्त नहीं बोलेंगे, ये इस तरह उसमें। और ईषणा समिति दिन में एक बार श्रावक के घर जाकर नवदावक्ति पूर्वक जो भी निर्दोष आहार है उसको खड़े खड़े अपने पानी पात्र में शोधन करके ग्रहण करना, ये कहलाएगी ईषणा समिति। और पीछे कमंडलू इत्यादि जो उपकरण है उनको देखभाल कर साफ करके पीछे से उठाना रखना है, तो ये आदान निक्षेपण समिति कहलाएगी। और त्रस और स्थावर जीवों को जहाँ बाधा ना पहुँचे ऐसे जंतु रहे शुद्ध प्रासुक स्थान में मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करना, ये उत्सर्ग या कि प्रतिष्ठापन समिति कहलाती। इस तरह से इन पांच क्रियाओं के दौरान सावधानी रखना ही समिति है। फिर कहते हैं दस धर्म क्या है, तो उत्तम क्षमा मार्गवर्ग सौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्यानी धर्म। उत्तम क्षमा सभी के साथ लगा देंगे, उत्तम मार्गो उत्तम आर्जो उत्तम सौच उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम किंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये दस प्रकार के धर्म हैं। उत्तम विशेषण लगाने का यहाँ पर आशय ये है कि इसमें आत्मकल्याण की भावना प्रमुख है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, आत्मकल्याण। इसलिए क्षमा भी उत्तम क्षमा कही गई है। इसमें कर्मों की निर्जरा और आत्मकल्याण का लक्ष्य प्रमुख है। बाह्य जो प्रदर्शित होने वाली क्रिया है वो नहीं है,
अंदर से
आंतरिक है, आंतरिक। इस अपेक्षा से इसमें उत्तम विशेषण लगाया गया है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं होना, ये कहलाएगी उत्तम क्षमा। और क्रोध आ जाने के बाद फिर क्षमा याचना कर लेना, ये यहाँ पर नहीं ग्रहण करने की है। फिर जाति कुल इत्यादि इन सब के मन से अहंकार से रहित होना, वो उत्तम मार्ग तो कहलाएगा। मन वचन का है कि तमाम जटिलता या कुटिलता से बच जाना, ये उत्तम आर्जो कहलाएगा। लोक का अत्यंत अभाव होना उत्तम शौच कहलाएगा। और सज्जन पुरुषों से अच्छे वचन बोलना वो कहलाएगा सप्त धर्म। सप्त धर्म और भाषा समिति में थोड़ा फर्क है। संयम और असंयमी, सज्जन और दुर्जन, सभी प्रकार के जीवों से हितमित प्रिय बोला जाएगा, वो भाषा समिति कहलाएगी। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं जिनके बारे में मालूम है कि ये संयमी जन है या कि हमारी बात का ठीक ठीक आशय लेंगे, उनके साथ फिर जो वचन बोले जाते हैं वो सब सप्त धर्म में आएगा। फिर उसमें हितमित और प्रिय की वो नहीं रहेगी रिस्ट्रिक्शन, यही दोनों में फर्क है। फिर उसके बाद उत्तम संयम क्या कहलाएगा, तो एक इंद्रिय और त्रस इत्यादि जीवों की आराधना ना हो और इंद्रियों के विषयों की विवेकता ना हो, इस तरह से इंद्रिय और प्राणी दोनों प्रकार के संयम का पालन किया जाता है, वो संयम कहलाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है,
तप।
तप, तो कर्मों का क्षय करने के लिए 12 प्रकार के अनशन आदि तप करना, वो तप कहलाएगा। और चेतन अचेतन समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़ना, शरीर से ममत्व भी नहीं रखना, ये अकिंचन धर्म कहलाएगा। पहले भोगे हुए भोग विलास की सामग्री और इन सब से और इन सब का त्याग कर देना, वो ब्रह्मचर्य धर्म कहलाएगा। इस तरह से ये 10 धर्म जो है वो संवर के लिए कारण बनते हैं। इसको अपन और सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के बिना इन 10 धर्मों का पालन होता है, इसलिए ये उत्तम कहलाते हैं। कोई लौकिक उपलब्धि नहीं है, बहुत आंतरिक उपलब्धि है। अनपेक्षाएं बारह होती हैं, अनित्याशरण संसार एकत्वा नत्वा सुच्याश्रो संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मन प्रेक्षा। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्य असुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात। इन्होंने धर्म साक्षात शब्द दिया है, धर्म उपेक्षा ही है। इस तरह इन 12 के स्वरूप का बार बार चिंतन करना ये अनुपेक्षा कहलाएगी। इंद्रिय के विषय हैं, धन संपत्ति है, जीवन यौवन है, इन सबकी क्षणिकता का विचार करना ये धनुपेक्षा कहलाएगी। ऐसा करने से क्या होगा, इन चीज़ों के अभाव में दुख नहीं होगा और इस संसार में धर्म के सिवाय और कोई शरण नहीं है जो कि हमें बचा सके। इस तरह का विचार निरंतर करना ये अशरण अनुपेक्षा हो जाए। और संसार में तो आवागमन अनादिकाल से लगा हुआ है, इस तरह से संसार के चारों गतियों के दुख और उसके आवागमन के दुखों का विचार करके विचार करना ये संसार अनुपेक्षा कहलाएगी। और यहाँ जो भी हम अपने जीवन में सुख और दुख भोगते हैं उस सबकी जिम्मेदारी हमारी है और उसको भोगने में हम अकेले हैं, इस तरह विचार करना ये एकत्व अनुपेक्षा कहलाएगी। शरीर भी मेरे से पृथक है और फिर अन्य पर पदार्थ भी मेरे से अलग है, इस तरह का विचार करना यानी अन्यत्व अनुपेक्षा कहलाएगी। शरीर की अपवित्रता का विचार करना ये असुचित्व अनुपेक्षा कहलाएगी। आश्रय होने से हमारे जीवन में संसार बढ़ जाता है, दुख आने लगते हैं, इस तरह आश्रय की हानियों का विचार करना ये अश्रय अनुपेक्षा कहलाएगी। और संवर के गुणों का विचार करना ये संवर अनुपेक्षा कहलाएगी। निद्रा के गुण दोष का विचार करना ये निद्रा अनुपेक्षा कहलाएगी। लोक के संस्थान आकार और उसकी संरचना इन सब का विचार करना ये लोकानुपेक्षा कहलाएगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, इस तरह संसार में और चीज़ें तो सुलभ हैं, बोधि ही दुर्लभ है, केवल ज्ञान दुर्लभ है, ऐसा विचार करना बोधि दुर्लभ मत कहलाएगी। और अनंत भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जो है वो हमें सुख देने वाला, उत्तम सुख देने वाला, इस तरह का निरंतर धर्म का विचार करना धर्मानुपेक्षा कहलाएगी। संक्षेप में अपन इस तरह इसको कर सकते हैं। और परिचय विजय क्या चीज़ है, तो मार्ग चवन निर्जनार्थम परिशोधव्य परिशा, संयम के या कि संवर के मार्ग से विचलित न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जो भूख प्याग इत्यादि की बाधा सही जाती है वो परिचय विजय कहलाता है। परिचय किसे कहेंगे, भूख प्यास की बाधा को परिचय कहेंगे। और भूख प्यास की बाधा को आपने समतापूर्वक सहन कर लिया तो परिचय विजय है। इस तरह से ये 22 परिचय गिनाए गए हैं। और दूसरी चीज, किसी के दबाव में नहीं तो आकाम निर्जरा होगी। वो कह रहे हैं कि परिशोधव्य मतलब प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही स्वेच्छा से स्वीकार किया है, सहन करना परवश होकर के नहीं। शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाज्ञा रति स्त्री चर्या श्रद्धा सैया क्रोश पद याचना लाभ रोग तरण स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये 22 परिचय के नाम है। शुदा परिचय, पिपाशा परिचय, परिचय शीत परिचय अलग है, उष्ण परिचय अलग है, दंश मशक अलग है, नाग्न परिचय, अरति परिचय, स्त्री परिचय, चर्या परिचय, निषद्या सैया आक्रोश बद याचना अलाप रोग तृण स्पर्श मल परिचय सत्कार पुरस्कार परिचय प्रज्ञा परिचय अज्ञान परिचय और अदर्शन परिचय, ये 22 परिचय हैं। अब इनके जो है परिभाषाएं उसमें डिटेल में दी हैं, अपन परिभाषाओं को रिपीट करें उससे कोई वो नहीं है। अब किस कौन स्थान में कितने परिचय हो सकते हैं या कि किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है, ये चीज इसमें आती है। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्थ वीतरागोस चतुर्दश, सूक्ष्म संप्राय नाम का 10वां गुण स्थान है और छद्मस्थ वीतराग यानी 11वां और 12वां गुण स्थान, इनमें जो है वो 14 ही परिचय होते हैं। क्षुधा पिपाशा शीत उष्ण दंशमशक चर्या सैया बद अलाप रोग तन स्पर्श मल प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय, ये 14 परिचय होते हैं। क्योंकि मुनि कर्म के उदय से होने वाले जो 8 परिचय हैं वो भी नहीं
है,
10वें गुण स्थान के बाद में चला गया इसलिए। और फिर कहते हैं कि और ऊंचे गुण स्थान में तो एकादश देवी जी ने 4 घातीय कर्मों से रहित जो जिनेन्द्र भगवान है, अनंत भगवान है, उनके वेदनी कर्म के सद्भाव होने से मात्र 11 परिचय होते हैं, शेष परिचय उनके लिए नहीं होते। बादर संप्राय सर्व, और बादर संप्राय अर्थात 6 से लेकर 9वें गुण स्थान तक तो सभी परिचय होते हैं। यहाँ पर परिचय जो है वो सामान्य व्यक्ति व्यक्ति को भी होते हैं जो भूख प्यास की वेदना, लेकिन यहाँ छठे स्थान में जो मुनि महाराज हैं उनकी अपेक्षा से समता परिणाम जिनमें महाव्रतों को अंगीकार करके फिर सहन कर रहे हैं तो वो परिश्रय विजय कहलाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं बादल सांप्राय अर्थात छठे से लेकर के नौवें गुणस्थान तक सब परिश्रय होते हैं। और ज्ञानावरणी प्रज्ञा क्या है, अब कौन से कर्म के वजह से कौन सा परिश्रय होता है, तो ज्ञानावरणी कर्म के होने पर प्रज्ञा परिश्रय भी होता है और अज्ञान परिश्रय भी होता है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान,
ज्ञान
तो क्षयरूप सम जितना होगा ज्ञान का उत्तर ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
हाँ।
उससे जो है अहंकार नहीं आना चाहिए तो वो प्रज्ञा परिचय भी हो गया। और इसी तरह अगर ज्ञान का स्वरूप सम नहीं है तपस्या करने के बाद भी तो अपनी अज्ञानता पर मलिनता नहीं आनी चाहिए, दीनता नहीं आनी चाहिए। समता दोनों अस्तित्व में रखेंगे तो अज्ञान भी एक परिचय, ज्ञान अगर परिचय है तो अज्ञान भी एक परिचय है। ये दोनों ज्ञान अवरण कर्म से रिलेटेड है। और दर्शन मोहंतरायु प्रदर्शन लाभ, दर्शन मोहिनी कर्म के होने से अदर्शन परिचय होता और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होता। इस तरह से लिया। और चारित्र मोहनी नाग्नारति स्त्री निश्रद्धा क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नागम परिचय अरति स्त्री निश्रद्धा आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये सात परिचय होते हैं। ये सब चारित्र मोहिनी के उदय की वजह से होते हैं। उभयगिरि निशेषा जो शेष 11 परिचय बचे, शुभा पिपासा की वेदना, शीत उष्ण की वेदना, दंश मशक चरिया शय्या पद रोग तन स्पर्श और मल परिचय, ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। एक व्यक्ति को एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, तो एकादेव भाज्य युगपदे कस्मिन नहीं कोई नहीं मुक्षते, एक जीव के एक साथ एक से लेकर 19 परिचय तक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि शीत उष्ण में से कोई एक समय में एक ही होगा। चरिया या तो चल रहे होंगे आप या सैया लेटे होंगे या निश्चित बैठे होंगे, इसमें से एक ही होगी तो दो वो कम हो जाए, फिर तीन कम हो जाते हैं तो 19 ही एक बार में होंगे अधिक से अधिक एक से लेकर के। अब जो है चारित्र के बारे में कहते हैं कि सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा ख्याति की चारित्र, सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा ख्याति, इस तरह पांच प्रकार का चारित्र। समस्त प्रकार की साबद्ध क्रियाओं का त्याग कर देना, ये कहलाएगा सामायिक चारित्र। या अपने समता परिणाम हमेशा बनाए रखना, ये सामायिक चारित्र कहलाएगा। अब सामायिक चारित्र से च्युत होने पर जो भी दोष लग गए हैं उन दोषों को का प्रायश्चित इत्यादि करके जब पुनः संयम में स्थिर हुआ जाता है उसको चित्तोपस्थापना कहते हैं। ध्यान में लीन थे उसके बाद बाहर आए, थोड़े बहुत जो भी जाने अनजाने दोष लगे उनको फिर से प्रतिज्ञान कर लिए, प्रायश्चित कर लिए, फिर आत्मा में स्थित हो गए, तो इस तरह का जो चारित्र कहलाएगा वो छेदोपस्था छेदे सती उपस्थापना। दोष हो जाने पर उन दोषों का निष्कासन करके पुनः आत्मस्थ हो जाना, ये कहलाएगा छेदोपस्थापना चारित्र। या कि एक चीज और है, साबद्ध का जो त्याग होता है वो भेद रूप से जब किया जाता है तो छेदोपस्थापना, और अवैध रूप से किया जाता है तो सामायिक चारित्र कहलाता है। इतना भी ऐसा भी परिभाषा कहीं कहीं पर मिलती है। और जिस चारित्र में प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट शुद्धि प्राप्त होती है वो परिहार विशुद्धि कहलाता है। इसमें जो है जन्म से लेकर 30 वर्ष तक सुखपूर्वक अपना जीवन घर में बिताता है जीव, और फिर दीक्षा लेकर के 8 वर्ष तक केवली तीर्थंकर के तीर्थंकर के निकट जो है प्रत्याख्यान नाम के 10वें पूर्व को पढ़ता है, और तीनों कालों में संध्याओं में दो दो कोश विहार करने का जिसका नियम रहता है। और हाँ, जिसके चर्या करने से मुनि महाराज के किसी जीव का घात नहीं होता, फिर वो परिहार विशुद्धि संयम होता है, सबके लिए नहीं होता सामान्य। अत्यंत सूक्ष्म कषाय होने से सूक्ष्म संप्राय नाम के 10वें स्थान में जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहलाते हैं। और समस्त मोहकर्म के उपशम या क्षय होने से जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा स्वभाव हो जाना यथाख्यात चारित्र कहलाता है, इसको अथाख्यात भी कहते हैं। इस तरह से ये पांच प्रकार का चारित्र है। अब जो है कहा था कि तप से निजरा होती है, तो वो तप क्या है, तो कहते हैं तप मंथन और बाह्य दो प्रकार का होता है। तो पहले बाह्य तप के भेद बता रहे हैं, अनुसरण मोदरी वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विभुक्त सैयासन काय क्लेशा बाह्यम तप। अनसन कौमोदरी प्रतिपुर संख्या रसपरिता विविध सयासन काय क्लेश, ये छह जो है वो वाह्य तप है। ख्याति पूजा ऐसी किसी भी लौकिक आकांक्षा न रख करके और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष रूप से और ध्यान और अध्ययन की सिद्धि के लिए जो चारों प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया जाता है वह अनसन तप कहलाता है। और संयम को बनाए रखने के लिए, विकारों के शांत करने के लिए और संतोष और स्वाध्याय को सुखपूर्वक करने के लिए जो अल्प आहार लिया जाता है वो अमोघ नाम का तप कहलाता है। और भिक्षाचर्या के लिए निकलते समय जो घरों का नियम या आहार का नियम ले लिया जाता है वो वृत्ति पर संख्या नाम का तप कहलाता है। इससे भी जो है क्षमा पर विजय प्राप्त होती है और इंद्रियों को जीतने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक से स्वाध्याय करने के लिए जो घी दूध दही इत्यादि रसों का त्याग किया जाता है वो रस परित्याग कहलाता है। और स्वाध्याय ध्यान अध्ययन के लिए एकांत स्थान में शयन करना, आसन लगाना ये वृत्त सयासन कहलाता है। और कष्ट सहने का अभ्यास करने के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है, कष्ट सहने का अभ्यास करने के लिए साथ में धर्म की प्रभावना के लिए जो विभिन्न प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष के नीचे या शीत ऋतु में खुले में आसन लगा के और विशेष प्रकार से तपस्या की जाती है वो सब काय क्लेश कहलाता है। इससे हमारे तितिक्षा जिसको कहते हैं शरीर में सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, आत्मबल भी बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये काय क्लेश है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि शरीर को तकलीफ में डालना काय क्लेश है, नहीं, शरीर पर आने वाली तकलीफ को शांति से सहन करने की योग्यता हासिल करना क्षमता को बढ़ाने का नाम काय क्लेश नाम का तप है। इस तरह से ये बाह्य तप है, क्योंकि इन तपों का पता दूसरों को लग जाता है करने वाले के, और इनमें किसी बाह्य चीज के त्याग और ग्रहण इसकी अपेक्षा है, इसलिए ये बाह्य तप कहलाते हैं। अन्न मतावलंबी भी इनको करते हैं, इसलिए भी इनको बाह्य तप कहते हैं। अभ्यंतर तप तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानंतरम, प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय उत्सर्ग और ध्यान, ये छह अभ्यंतर तप है। मन को वश में करने के लिए किए जाते हैं ये, इसलिए जो है ये अभ्यंतर तप कहलाते हैं। और बाह्य तप से शरीर कंट्रोल में आ जाता है, ऐसा भी ले सकते हैं अपन। अप्रमाद से कोई दोष लग गया हो तो उसको दूर करने के लिए जो आलोचना प्रतिक्रमण इत्यादि की प्रक्रिया पूर्वक किया जाता है वो प्रायश्चित नाम का तप है। और पूज्य पुरुषों का आदर करना ये विनय तप कहलाएगा। शरीर की सेवा शुश्रूषा करने को वैयावृत्ति कहेंगे। और आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना ये स्वाध्याय नाम का तप है। और महत्व का त्याग कर देना विसर्ग नाम का तप है। और चित्त की चंचलता को भी दूर करके एकाग्र होना वो कहलाएगा ध्यान नाम का तप। नौ चतुर्दश पंच भी बोला यथाक्रम प्राग ध्यान। अब मध्यंतर तप है, इनके भेद प्रभेद कितने हैं तो कह रहे हैं कि प्रायश्चित के नौ भेद हैं, विनय के चार भेद हैं, वैयावृत्त के दस भेद हैं, स्वाध्याय के भेद हैं। वे कौन से हैं तो कह रहे हैं आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक उत्सर्ग तपस्या परिहारोप स्थापना। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय यानी आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों की मिली जुली स्थिति, विवेक उत्सर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना, ये नौ प्रकार के प्रायश्चित दिए जाते हैं। गुरु के सामने जाकर अपने दोषों का निवेदन करना ये आलोचना नाम का प्रायश्चित है। अब आलोचना भी जो है वो दस प्रकार की होती है, उसके भी बहुत भेद प्रभेद हैं तो उसको अपन विशेष नहीं करेंगे। और प्रमाद से जो दोष हो गए हैं वे सब मेरे दोष मिथ्या हो, इस तरह से अपनी मानसिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये कहलाएगा प्रतिक्रमण। कोई कोई अपराध तो आलोचना से शुद्ध हो जाता, कोई कोई प्रतिक्रमण से शुद्ध होता है, और कोई कोई में आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना पड़ते, और जब दोनों ही किए जाते हैं तो वो कह जाता तदुभय नाम का प्रायश्चित है। और सदो सहार हो गया या उपकरण ऐसा ले लिया जिससे कि राग द्वेष होने लगा तो उसका त्याग कर देना ये विवेक नाम का प्रायश्चित, एक निश्चित समय के लिए कि आप ये चीज छोड़ दो, ये विवेक प्रायश्चित हो गया। कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग इत्यादि करना प्रायश्चित स्वरूप तो विसर्ग प्रायश्चित कहलाएगा। अनसन आदि तप करना उस समय के लिए प्रायश्चित स्वरूप तो फिर वो कहलाएगा तप, हाँ तप नाम का प्रायश्चित कहलाएगा। दीक्षा का समय कम कर दिया छेद कर दिया, कोई 20 वर्ष का दीक्षित साधु है अपराध हो गया तो 10 वर्ष की दीक्षा छेद कर दी, अब वो 10 वर्ष का माना जाएगा, यानी जो 10 वर्ष से एक दिन अधिक वाला दीक्षित साधु है उसको नमस्कार करना पड़ेगा। ये इस तरह से तो ये जो है छेद प्रायश्चित होगा, कुछ समय के लिए संघ से बाहर निकाल करके उसको जो प्रायश्चित दिया जाता है वो परिहार नाम का प्रायश्चित कहलाता है। ये उत्तम सहन वाले को दिया जाता है, सामान्य सहन नहीं कर पाएगा इस तरह से तो संदेश और हो जाएगा, जबकि प्रायश्चित का उद्देश्य तो निर्मलता है। पुराना दीक्षा को छेद कर फिर से दीक्षा देना ये उपस्थापना नाम का प्रायश्चित कहलाता है। इस तरह से ये प्रायश्चित है, ये बात के लिए तीन प्रायश्चित हैं उत्तम सहन वाले के लिए है। विनय तप तो ज्ञान दर्शन चारित्र उपचार, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, उपचार विनय, ऐसी चार प्रकार की विनय। आलस त्याग करके आदर पूर्वक सम्यक ज्ञान का को ग्रहण करना, अभ्यास करना, ये सब ज्ञान विनय कहलाएगी। और भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्वों का निर्दोष श्रद्धान करना ये दर्शन की विनय कहलाएगी। अपने मन को चारित्र के पालन में लगाना ये चारित्र की विनय कहलाएगी। और आचार्य आदि जो पूज्य पुरुष हैं उनके आ जाने पर खड़े हो जाना और उनका सम्मान करना, उनके बैठने के लिए स्थान देना, हाथ जोड़ना, ये सब जो है उपचार विनय कहलाती है, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस तरह विनय चार प्रकार की होती है। भैया वृत्ति तप के भेद बस है, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेक्ष क्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञाना। आचार्य की भैया वृत्ति करना, उपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु और मनो, ये 10 प्रकार के साधुओं की अपेक्षा से भैया वृत्ति के 10 भेद कह दिए हैं। भैया वृत्ति तो एक ही प्रकार की होती है, जिसके पास जाकर के सब मुनि महाराज व्रताचरण लेते हैं या जो स्वयं आचरण का पालन करते हैं पंचाचार का और अन्य साधुओं को करवाते हैं वहाँ ही खिलाते हैं, ये अपन जानते हैं। जिनके पास जाकर के मुनिजन पठन पाठन करते हैं वो सब उपाध्याय कहलाते हैं, और जो साधु बहुत व्रत और उपवास आदि कहलाते करते हैं वे तपस्वी कहलाते हैं, और जो साधु निरंतर श्रुति के अभ्यास में लगे हैं वे शेक्ष कहलाते हैं, और रोगी साधु हैं तो उनको ग्लान कहेंगे, और बद्ध मुनियों की परिपाटी में जो मुनि है बहुत चिरकाल से दीक्षित है उन्हें गण कहते हैं, और दो या तीन चिर प्रवर्तित साधुओं के समूह को भी गण कहते हैं। और दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परंपरा है उसको कुल कहते हैं, और ऋषि यति अंगार आदि के बीच से जो चार प्रकार के साधुओं का समूह है उसको संघ कहते हैं, या कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका के समूह को संघ कहते हैं। बहुत समय से दीक्षित मुनि को साधु कहते हैं, साधु की परिभाषा यहाँ बिल्कुल अलग थी, बहुत समय से चिर प्रवर्धित जो मुनि है उसको साधु कहते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद किया। और जिनका उपदेश लोक में मान्य हो या जो लोक में सबके द्वारा सबको भले मालूम पड़ते हो अच्छे मालूम पड़ते हो वो साधु मनोज्ञ कहलाते हैं, या कि दीक्षा लेने के सम्मुख है दीक्षा होने वाली है तो वो भी मनोज्ञ कहलाते हैं। इस तरह भैया व्रत के तप के 10 भेदों का वर्णन हो गया। अब स्वाध्याय के भेद कितने हैं? वाचना प्रचनानुप्रेक्षाणाय धर्मोपदेश। स्वाध्याय के 5 भेद हैं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आज्ञा और धर्मोपदेश। जो विनयशील हैं धर्म की इच्छा रखते हैं ऐसे शिष्यों के लिए गुरु के द्वारा जो शास्त्र पढ़ाया जाता है उसका अर्थ बताया जाता है वो वाचना कहलाती है, वो वाचना नाम का स्वाध्याय। और अज्ञान दूर करने के लिए या जो जाना है उसको और दृढ़ करने के लिए विशिष्ट ज्ञानियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रचना नाम का स्वाध्याय कहलाता है। और जो हमने शब्द अर्थ जाना है ग्रंथ का उस अर्थ का मन में बार बार चिंतन करना विचार करना यह अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय कहलाएगा, और शुद्धिपूर्वक उसका पाठ करना दोहराना ये आमना नाम का स्वाध्याय है, और धर्म का उपदेश देना ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। इस तरह से ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। उत्सर्ग तप के भेद बाह्याभ्यंतरोपथ्यो। उत्सर्ग जो है वो 2 प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। त्याग को उत्सर्ग कहते हैं, तो त्याग 2 तरह से होता है, एक तो बाह्य जो अपने आत्मा से जुड़े धन धान इत्यादि मकान दुकान इत्यादि पदार्थ है उनका त्याग करना ये बाह्य उत्सर्ग कहलाएगा, और जो अंतरंग में क्रोध मान माया इत्यादि कषाय भाव है उनका त्याग करना ये अंतरंग उपधि कहलाए। वायु अभ्यंतर उपध्यो, वायु और अभ्यंतर उपधि के त्याग रूप विसर्ग दो प्रकार का है ये। तो अब दूसरे परिभाषा है कि कुछ समय के लिए ये जीवन पर्यंत के लिए शरीर से जो ममत्व का त्याग किया जाता है उसे भी विसर्ग नाम का तब कहते हैं, ये भी उसका है।
अंतरंग से हो सकता है, वो बाहर से कैसे होगा त्याग?
अंतरंग से हो सकता है तो वायु में तो धन धान इत्यादि का त्याग किया,
प्रक्रिया का जो
परिक्रिया का जो त्याग है वो वायु में हो गया,
शरीर से
अंतरंग में शरीर से मन का त्याग किया जाता है। उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान नाम पर होता है। उत्तम सहन के धारी मनुष्य का अपने समस्त चित्त की वृत्तियों को सब तरफ जाने से रोककर एक ही विषय में जो एकाग्र किया जाता है वो ध्यान कहलाता है, और ये ध्यान अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक ही होता है।
उत्तम
उत्तम सहनन आदि के तीन सहनन उत्तम सहनन कहलाते हैं, वज्रवशर नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। हालांकि मोक्ष तो सिर्फ एक वज्रवशर नाराज सहनन से ही होता है, पर इसमें इन्होंने जो है उत्तम सहनन, तीन सहननों को उत्तम सहनन कहा है, पर यहाँ विशेष रूप से वज्रवशर नाराज सहनन की ही विवक्षा है।
मोक्ष के लिए बिना राशि
भेद प्रभेद क्या है ये चर्चा करते हैं। आर्थ रोध धर्म शुक्लानि, ध्यान के चार भेद हैं, आर्थ ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये तो ध्यान के चार भेद हैं, आर्थ रोध धर्म और शुक्ल ध्यान। इसमें से दो ध्यान तो अशुभ हैं, आर्थ ध्यान रोध ध्यान, जिससे कि पाप का बंध होता है, और दो ध्यान शुभ है जिनसे कि कर्मों का नाश होता है, कर्मों का क्षय होता है। तो कह रहे हैं परे मोक्ष के अंत के जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दो ध्यान है वो मोक्ष के कारण बनते हैं। इससे सीधा अर्थ ये निकला है कि पहले के दो आर्थ ध्यान और रोध ध्यान वो संसार के हेतु हो गए। आर्थ न मनोज्ञ संप्रयोगे तद भी प्रयोगाय स्मृति समन्वय है। आर्थ ध्यान के भेद तो आर्थ ध्यान जो है वो पहला भेद उसका अर्थ ध्यान का है, आर्द्र न मनोज्ञ से संप्रयोगे तद भी प्रयोगा स्मृति समन्वय हारा। अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है, तो उसमें इन्होंने ये दिया है कि जो भी अप्रिय वस्तु है, विष है, कांटा है, शत्रु है, ये सब अप्रिय वस्तु है, इनका समागम होने पर कैसे उनसे मैं पृथक हूं, कैसे उनसे मेरा पीछा छूटे, ऐसा बार बार जो विचार चलता रहता है वो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ है। और विपरीत मनोज्ञ, और जो पुत्र धन स्त्री इत्यादि प्रिय वस्तु हैं उनका वियोग हो जाने पर वो कैसे मुझे प्राप्त हो पुनः, इस तरह का जो चिंतन चलता रहता है, विचार निरंतर विचार चलता रहता है, वो इष्ट वियोग नाम का है। अनिष्ट का संयोग होने पर और अनिष्ट का वियोग होने पर दोनों स्थितियों में, और वेदना यास्य, अब शरीर में कोई व्याधि हो गई तो शरीर के कष्ट होने पर दिन रात उसी की चिंता करना, ये सब जो है वेदना नाम का अर्थ ध्यान। निदानम च, मुझे आगामी भविष्य में अच्छे भोग उपभोग की सामग्री या मनोनुकूल सामग्री प्राप्त हो, इस तरह के लिए निरंतर चिंता करते रहना, ये निदान अर्थ ध्यान कहलाता है। अब अर्थ ध्यान किसको होता है, तो फिर तद विरत देश विरत प्रणत्व संहिता नाम। आर्थ ध्यान जो है एक तो व्रत से रहित व्यक्ति को होता, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान में सब व्रत से रहे थे, चौथे में भी होगा, और फिर कह रहे हैं देश व्रत यानी पांचवें स्थान वाले श्रावक को भी हो सकता है, और प्रमत्त संयत गुण स्थान वाले मुनि को भी हो सकता है। चित्त गुण स्थान में जब आएगा प्रमत्त संयत गुण स्थान में मुनियों के निदान नाम का अध्ययन नहीं होता, बल्कि तो इष्ट अनिष्ट संयोग और शरीर में होने वाली व्याधि का चिंतन ये छठे गुण स्थान में होता है।
निदान का कहना है कि वो भी इस तरह की
छठे गुण स्थान निदान आर्थ ध्यान नहीं होता, निदान तो करेंगे वो प्रशस्त निदान, लेकिन यहां निदान आर्थ ध्यान की बात है। ये हमने इसमें क्लियर किया है कि निदान निदान शल और निदान आध्यान में क्या अंतर है। अब रोत ध्यान हिंसा रतस्ते विषय संरक्षण भ्यो रोज मनिरत देश व्रत हो। हिंसा झूठ चोरी और परिग्रह इनके संचय करने की चिंता करते रहना ये रोत ध्यान कहता है। रुद्र दूसरे का अहित करने के परिणाम भी जो है इसमें होते हैं, क्योंकि दूसरे का अहित होने पर भीतर भीतर हर्ष होना ये भी रौद्र ध्यान का प्रतीक है। हिंसा करके करवा के और हिंसा का निरंतर विचार करके प्रसन्न होना आनंद महसूस करना ये हिंसानंद नाम का अर्थ है। और इसी तरह झूठ बोल करके बुलवा करके और आनंद लेना ये दशानंद हो जाएगा। और चोरी करके करवा के या चोरी करवा करवा के कि कैसे कैसे करेंगे वो निरंतर विचार चल रहा है वो सब चोरी आनंद नाम का रौद्र ध्यान हो गया। और विषय संरक्षण मतलब परिग्रह का संचय कैसे करें नाना प्रकार के उपाय विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि ऐसे कमाएंगे ऐसे लाएंगे ऐसे संचय करें ऐसा जो है ये विषय संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान है। तो कह रहे हैं कि अविरत देश विरति हो ये जो रौद्र ध्यान है वो मुनियों को नहीं होता। यदि मुनियों को रौद्र ध्यान हो जाए तो वो संयम से नीचे आ जाए मैंने चौथी और पांचवें गुणस्थान तक हो सकता है पहले दूसरे तीसरे चौथे में तो रहेगी। ये कहेंगे देश गति को भी रौद्र ध्यान हो सकता है तो देखिए जो गति नहीं है उसको तो रौद्र ध्यान हो तो ठीक लगता है लेकिन जो देश गति है उसको कैसे आएगा। तो ये कह रहे हैं कि शावक पर जब कोई विपत्ति आती है उसके धर्मायतन की रक्षा का भार उसके ऊपर है और उसके परिवार की रक्षा का भार उसके ऊपर है उसकी रक्षा के लिए जब हिंसा के आवेश में आ जाता है वो तो उसको रौद्र ध्यान लेकिन इतना जरूर है कि सम्यक दृष्टि होने की वजह से उसका रौद्र ध्यान उसको नरक नहीं ले जाता ऐसा रौद्र ध्यान नहीं होगा कि जिससे नहीं तो रौद्र ध्यान का फल ही नरक है। अब धर्म ध्यान का स्वरूप पता है आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचय धर्म आज्ञा विचय अपाय विचय विपाक विचय और संस्थान विचय ये चार जो है धर्म ध्यान है। अब विशेष बुद्धि नहीं होने से या मंद बुद्धि होने से पदार्थों के सूक्ष्म होने से और कोई उदाहरण इत्यादि में हमारा प्रवेश नहीं है ऐसी अवस्था में सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो आगम में वचन कहे गए हैं उनको प्रमाण मान करके श्रद्धा कर लेना कि ऐसा ही भगवान की आज्ञा है ये आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। या ऐसा भी ले सकते हैं कि स्वयं पदार्थ को जान करके दूसरे को उन पदार्थों को समझाने के लिए दृष्टांत आदि का विचार करते लेकिन अपन कि इनको ऐसे समझा देंगे इनको ये भी जो है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान ही है कि मैं दूसरे को ये बात इस तरह से समझाऊंगा ताकि उसको धर्म की बात सर्वज्ञ भगवान की समझ में आ जाए तो ये उसका अपना आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाएगा क्योंकि उद्देश्य जो है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के प्रचार का है इस तरह। अच्छा जो लोग अपना संसार के कल्याण तो चाहते हैं लेकिन उल्टे मार्ग पर चले गए हैं उनके बारे में विचार करना कि कैसे ये सच्चे रास्ते पर आएंगे कैसे ये मिथ्या से बचेंगे इस तरह का जो निरंतर चिंतन चलता रहता है अपाय विजय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। और कर्म के फल का विचार करना कि सभी जीव जो अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल यहाँ सुख दुख रूप में पाते हैं स्वयं मैं भी पा रहा हूँ सारा संसार पा रहा हूँ इसका विचार करना ये भी धर्म ध्यान है ये विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान है। और लोक के आकार उसकी अवस्था और उसमें रहने वाले जीवों इत्यादि का विचार करना ये संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान है। ये जो है ये धर्म ध्यान जो है अभिरति देश विरति प्राप्त समय तो अप्राप्त समय इन सब गुणस्थान वाले जीवों को हो सकता है सम्यक दृष्टि को हो अभिरति को देश व्रत को भी प्राप्त समय अप्राप्त सबके लिए हो गए। शुक्ल चाद्य पूर्विता है अब शुक्ल ध्यान के बारे में अभी चर्चा नहीं करी पर पहले ये बता दिया कि शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है तो कह रहे हैं कि आदि के दो शुक्ल ध्यान हैं उनको तो शुद्ध केवली महाराज के ही वो हो सकते हैं पूर्व बारह में तीन में क्यों पूर्व शुद्ध केवली शुद्ध केवली तो छठे साथ में हमें स्थान में रहते हैं उन्हीं महाराज लेकिन उनको तो शुक्ल ध्यान होगा तभी तो शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप होते हैं उन्होंने स्थान में चार घाती है ग्यारह में गुणस्थान से ग्यारह बारह में गुणस्थान में पर उसके लिए शुद्ध केवली चाहिए उनको इतना नहीं ग्यारह में 16 दिन का पाठी होना चाहिए, सभी नहीं जा सकते शुक्ल ध्यान कर सकते, ये कंडीशन बना।
केवली भगवान के लिए ये आवश्यक है कि वो दासन के पाठी,
केवली भगवान के लिए नहीं, शुद्ध केवली किसे कहेंगे?
अच्छा, शुद्ध का जिसको
केवल ज्ञान के संपूर्ण विषय को जो अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते हैं ऐसे मुनि महाराज शुद्ध केवली कहला दीजिए। अभी शुद्ध केवली महाराज छठे सातवें स्थान में है, छठे साथ में, अब छठे सातवें स्थान में उनमें ध्यान में लीन हो गए, अपना ज्ञान ही उनको भी अगर ध्यान में लीन हो तो उनको आगे बढ़ करके गाते
हरे
छठे सातवें स्थान क्या पहले स्थान में ग्यारह अंग का पाठी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि है ग्यारह अंग पढ़ने का, कई लोग ग्यारह अंग का, लेकिन चौदह पूर्व नहीं पढ़ सकते समय शुक्ल ध्यान किसके होते हैं तो परे केवली ना है, बाकी के जो दो शुक्ल ध्यान होते हैं वे सहयोग के लिए केवली के होते हैं। अब शुक्ल ध्यान के भेद प्रभेद बता रहे हैं, पृथक तो वितर्क, पृथक तैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विवर्त क्रिया निवर्ती, पृथक वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विवर्त क्रिया निवर्ती, ये चार शुक्ल ध्यान है। अब इन सबके नाम भी अपने अनुसार इनके लक्षण आगे कह रहे हैं, आगे कहेंगे। त्रेक योग काय योगा योगा, पहला जो शुक्ल ध्यान है वो तीनों योगों में होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग का आलंबन लेकर के ही होता है, और तीसरे शुक्ल ध्यान में मात्र काय योग का आलंबन ही होता है। ये फिर एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, आदि के दो शुक्ल ध्यान है उनका विशेष कथन करने के लिए कह रहे हैं कि दोनों शुक्ल ध्यान जो है पूर्ण शुद्ध ज्ञानी के ही होते हैं, इसलिए दोनों का आधार क्या है, एक ही शुद्ध ज्ञान के माध्यम से शुद्ध ज्ञान का आलंबन लेकर के वो उस ध्यान को करते हैं। ये सारी कंडीशन बता रहा है कि मन वचन काय योग में से कोई ना कोई एक योग का आलंबन तीनों का ले सकते हैं, आलंबन तीनों में से पहले शुक्ल ध्यान में, दूसरे शुक्ल ध्यान में तीनों में से किसी एक का लेते हैं, और शुद्ध ज्ञान का आलंबन तो पहले दूसरे दोनों शुक्ल ध्यान करने वालों को चाहिए पड़ेगा, इसलिए उनको वितर्क भी कह रहे हैं और विचार भी कह रहे हैं, वितर्क और विचार। अब वो कह रहे हैं कि अविचारण द्वितीय, लेकिन दूसरा शुक्ल ध्यान उसमें अविचार होता है, मतलब विचार से रहित होता है, पहला शुक्ल ध्यान तो सवितर्क है और सविचार है, पर दूसरा वितर्क से सहित तो है लेकिन विचार से रहित है, तो कहते वितर्क और विचार क्या है, तो आगे लक्षण होता है वितर्क शुक्ल, विशेष रूप से तर्क यानी विचार करने को वितर्क कहते हैं, वितर्क का नाम शुद्ध ज्ञान, यानी शुद्ध ज्ञान के आलंबन से होने वाला वितर्क, सब वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान का आलंबन, जिस ध्यान में शुद्ध ज्ञान का आलंबन आवश्यक है, इसलिए इतना शुद्ध ज्ञान चाहिए, वाद शांति पाठी होंगे तभी इस ध्यान को कर पाएंगे, इतना शुद्ध ज्ञान पूर्ण होना चाहिए कि उसका आलंबन लेकर और वो ध्यान करने लगे। तो पहले और दूसरे दोनों शुक्ल ध्यान के लिए शुद्ध ज्ञान तो आवश्यक है, फिर कह रहे हैं कि दूसरे शुक्ल ध्यान के लिए विचार की आवश्यकता है, विचार का अर्थ क्या है, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ का मतलब उस द्रव्य पर्याय से जिसका ध्यान किया जाता है, और व्यंजन का अर्थ वचन से है, और मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, ये इस तरह से इन्होंने अर्थ व्यंजन और योग इन तीनों में परिवर्तन कर सकता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में क्षण द्रव्य में वेरिएशन हो सकता है, एक पर्याय का चिंतन कर रहे थे बदल के दूसरी पर्याय का करने लगे, अच्छा किसी एक वचन का आलंबन लिया था दूसरे वचन का आलंबन ले लिया, अभी मन का लिया था वचन का आलंबन ले लिया, फिर काय का आलंबन ले लिया, मन वचन काय तीनों में वेरिएशन हो सकता है, इस तरह से जिस ध्यान में होता है वो कहलाता है विचार युक्त ध्यान, वो पहला ध्यान कहलाएगा, कथत्व वितर्क विचार। इस तरह से इस ध्यान को करते समय द्रव को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, पर्याय को छोड़कर द्रव का ध्यान करना, शुद्ध के एक वाक्य का सहारा लेके शुरू किया था दूसरे वाक्य में चले गए, इस तरह चेंज, जो लोग कहते हैं ना बार बार कि एक विचार में स्थिर हो जाए तो उन्हें उत्पन्न नहीं होता, उन्हीं विचारों में धीरे धीरे करके रिफाइन होते होते और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म ऐसा होता चला जाता, आलंबन तो लेना ही पड़ता है उसके लिए, बिना विचार के तो आलंबन के होता ही नहीं, बहुत बाद में आती है। तो ये सब व्यंजन संक्रांति कहलाती है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य का आलंबन ले लिया, फिर काय योग को छोड़ करके वचन योग का, वचन योग को छोड़ के मनोयोग का, तीनों में संक्रांति अर्थात परिवर्तन होता रहता है, ये विचार कहलाता है, ये पहले शुक्ल ध्यान में होगा, दूसरे शुक्ल ध्यान में ऐसा नहीं होता। इस तरह से ये चार ध्यान के बारे में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जिसमें मन बन चाहता है कि समस्त स्थूल क्रियाओं का निरोध करके सूक्ष्म का योग में स्थिर होकर के जो ध्यान किया जाता है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और जिसमें विपरीत क्रिया जिसमें समस्त प्रकार की क्रियाओं से विपरीत होकर के जो ध्यान किया जाता है वो केवल भगवान के होता है, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान। तो उसकी चर्चा भी समान रूप से हो गई। अब कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टियों के समान रूप से निगरानी होती उनमें भी नजरा क्रम क्रम से बढ़ती हुई होती है। वो क्रम क्या है? सम्यक दृष्टि शावक वृतानंत वियोजक दर्शन क्षत्रोक्षण शांत क्षपत क्षीण मोह जिनाना क्रम से संख्य गुण निर्द्रा। सम्यक दृष्टि, उससे ज्यादा पंचम गुण स्थान वृत्ति शावक की निर्द्रा, उससे ज्यादा महावृत्ति मुनि की निर्द्रा, उससे अधिक आनंदानुबंधु की विसंयोजना करने वाले की निर्द्रा, और उससे भी ज्यादा दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले की निद्रा, और उससे भी ज्यादा चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले की निद्रा, और फिर जिसका मोह पूरा उपशांत हो गया ऐसे गुणस्थान जो ग्यारहवें गुणस्थान वाले की उससे भी ज्यादा, और क्षपक श्रेणी चलने वाले की उससे भी ज्यादा, और क्षीण मोह यानी बारहवें गुणस्थान वाले की उससे भी ज्यादा, और केवली भगवान के परिणामों की विशुद्धि होने से अधिक अधिक, और
जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं
इसमें हम सूक्ष्म रूप से नहीं कर रहे चर्चा, स्थूल रूप से हमने ये बात कर ली। अब जो है जो मेरे ग्रंथ मुनि हैं उनके भेद कर लिए, तो वो कह रहे हैं कि कुलात व कुशकुशी निर्ग्रंथ स्नात का है मेरे ग्रंथ। निर्ग्रंथ जो है वो पांच प्रकार के हैं, कुलात नाम के, वकुश नाम के, कुशील नाम के, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये पांचों जो है वो निर्ग्रंथ के ही भेद हैं। अच्छा, जिनके उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं होती पालन करने की, लेकिन मूल गुणों में भी जो कभी कभी दोष लगा देते हैं ऐसे साधु को कुलाक कहते हैं। कुलाक एक तरह से पुआल जैसे होती है चावल का भूसा, उसके समान है। वो कह रहे हैं कि पुआल सहित चावल की तरह जिनका आचरण मलिन हो जाता है ऐसे साधु को कुलाक कहते हैं। अच्छा, जो अभ्यंतर और बाह्य समस्त परिग्रह का त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर है, गुणगुण भी जिनके निर्दोष हैं, लेकिन पिछी कमंडलु शरीर इत्यादि के बारे में जिनका मेल नहीं उनको सजाने में लगे रहते हैं, वो बकुश नाम के मुनि महाराज। बकुश का चितकबरा होता है, जैसे सफेद पर काले धप्पे इत्यादि पड़े देखते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं कि इनका भी आचरण जो है इस तरह
थोड़ी सी मलिनता
है, हाँ थोड़ी सी उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए उनको बकुश कहते हैं। हालांकि ये सब मुनि महाराज जी भावलिंगी हैं, ये मोक्ष चले जाएंगे उसी भाव से, पर उनकी बाह्य में देखने में आता है करे उनका अपने शरीर को मैं बहुत आशक्त हुई, अपनी पीछे बड़े संभाल के रखते हैं, तो बाकी सब मूल गुण अच्छे से पालन करेंगे, उत्तर गुण तपस्या करेंगे खूब, पर थोड़ी उनकी उसमें रहेंगे। और कुशील, अब ये कुशील शब्द अपने आप में वैसे ही लगता है, पर ये कुशील मतलब बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं उन साधु के लिए है। उनके दो भेद हैं, प्रतिशेवना कुशील और कषाय कुशील। देखिएगा जिनके मूल गुण और उत्तर गुण तो एकदम पूर्ण है, पर कभी कभी मूल गुण में जिनके दोष लग जाता है वो कहलाते हैं प्रतिशेवना कुशील। उत्तर गुण मतलब 22 परीक्षा का पालन करना, 12 पद करना, 10 धारण करना, ये मूल गुण नहीं है, ये उत्तर गुण के नाम, पर उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती तो उनको प्रतिशेवना कुशील कहते हैं। और जिन्होंने अन्य सब कषायों को तो वश में कर लिया, सिर्फ संजुलन कषाय जिनकी शेष रह गई है वो कहलाते हैं कषाय कुशील। देखिएगा निर्ग्रंथ किसे कहेंगे, तो अंतर मुहूर्त के बाद जिन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होने वाला है वास्तव में वे निर्ग्रंथ के अंतर मुहूर्त के उपरांत, और जिनको चारा जातीय कर्म नष्ट होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो गए तो उनको स्नातक के ग्रेजुएट स्नातक। ये सब समय दृष्टि है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह इत्यादि है, चारित्र की हीनाधिकता की वजह से इनके निर्ग्रंथ के पांच भेद लगा दिए। आगे इसमें कहेंगे संयम शुद्ध के स्थेवना तीर्थ लिंग लेशो पाद स्थान विकल्पता साधना। संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान के भेद से पुनः आदि मुनियों उनके भेद जानना चाहिए। माइक चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है। संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशो पाद स्थान विकल्पता साध्या, ये मुनियों के भेद प्रभेद जानने के लिए स्थान है। तो कह रहे हैं कि पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामाय को शिविरों का स्थापना संयम होता है, संयम की अपेक्षा कषाय कुशील मुनियों के सामायिक शिविरों की स्थापना पर्याय सिद्धि और सूक्ष्म संप्राय, ये चार प्रकार का संयम होता है। निर्ग्रंथ और स्नातक के एकमात्र यथा का संयम होता है, इस तरह संयम की अपेक्षा से भी हो गया। फिर पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि अधिक से अधिक पूरे 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं, और जो पुलाक मुनि महाराज हैं वो आचार अंग के ज्ञाता होते हैं, बकुश और कुशील और निर्ग्रंथ 5 समिति 3 मुक्ति मात्र उतना ही ज्ञान के ज्ञाता होते हैं, स्नातक तो केवल ज्ञानी होते हैं। इस तरह से अगर शुद्ध की अपेक्षा से देखें तो ये हो गया अंतर में प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का अर्थ व्रतों में दोष लगाया, तो पुलाक मुनि तो 5 महाव्रतों में या रात्रि भोजन त्याग नाम के किसी एक पर्वत होकर के कभी कदाचित भेद भी लगा देते हैं, और बकुश मुनि के उपकरण बकुश शरीर बकुश ये अपन ने दो पड़े थे, उपकरण बकुश में तो सुंदर सुंदर उपकरण में आसक्ति होने से थोड़ी विराजना हो जाती, और शरीर बकुश में शरीर के प्रति आसक्ति होने से विराजना होती, तो प्रतिसेवना ये हो गई। इस तरह से प्रतिसेवना कुशील जी मुनि महाराज है उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं, कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक इनके तो प्रतिसेवना होती नहीं है, कोई दोष नहीं लगता। और अब कह रहे हैं तीर्थ की अपेक्षा, तो सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं भेद, और लिंग की अपेक्षा से द्रव्य लिंग और भावलिंग, तो भावलिंग की अपेक्षा 5 ही भावलिंग है, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि और संयमी होते हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा सभी निर्गंध दिगंबर होते हुए भी स्नातक के पीछे की मंडलिनी होती, से सबके पीछे की मंडल होती, बाह्य में द्रव्यलिंग देखें अगर जो, इसलिए द्रव्यलिंग में थोड़ा सा अंतर हो गया। अच्छा, पुलाक के तो 3 शुभ लेशाएं होती हैं, बकुश और प्रतिशेपना कुशील के 6 लेशाएं होती, क्योंकि कभी कभी उनके उपकरण के प्रति आसक्ति हो जाती तो 6 लेशाएं शुभ लेशा भी हो जाती, और कषाय कुशील के कृष्ण नील लेशा के अलावा 4 लेशाएं होती, निर्गंत स्नातक की तो एकमात्र शुभ लेशा होती, अयोग के भी तो लेशा से पार हो गए। अब फिर उसके बाद क्या है, उत्पाद की अपेक्षा से तो पुलाक मुनि जो है अधिक सजे 12 स्वर्ग तक चले जाते हैं, उत्पन्न हो जाता है, और बकुश और प्रतिसेवना कुशील 22 सागर की स्थिति वाले आरण अच्युत नाम के 16 स्वर्ग तक चले जाते हैं, कषाय कुशील और 11वें गण स्थान वाले जो निर्गंत हैं वो 33 सागर की स्थिति वाले सर्वार सिद्धि नाम तक भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबकी उत्पत्ति कम से कम अगर हो तो सौधर्म सर्ग के युगल तक तो होती है, अधिक से अधिक यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसना तक तो डायरेक्ट मोक्ष ही जाते हैं उनके, तो इसमें कोई भी इस तरह से नामाध्याय हुआ। मूल शयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवलम, मुनि कर्म के क्षय से पहले, क्योंकि मुनि कर्म का क्षय होता, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण मंत्राय इन तीनों के एक साथ, अर्थात मुनि ज्ञानावरण दर्शनावरण मंत्राय इन चारों कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। दो भागों में इसलिए कहा क्योंकि मुनि कर्म का पहले होता है, उसके बाद फिर एक साथ तीनों कर्मों का नष्ट होता है। इसलिए बंध हेतु तो भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षु मोक्ष, बंध के कार्यों का भाव होने से निद्रा से समस्त कर्मों का अत्यंत भाव होना ही मोक्ष है। ये मोक्ष की परिभाषा इस तरह नहीं है कि तो क्या है बाल्टी में सब कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त होगी, उसी का नाम मोक्ष है। औपशमिक आदि भव्यत्वानांच, प्रश्न ये उठता है कि जो पौद्गलिक द्रव कर्म है उनके नाश हो जाने से मोक्ष होता है या अंतरंग के भावों के द्वारा होता है, तो इसके लिए सूत्र अलग से दे दिया कि औपशमिक आदि भगवत बालांच, जीव के जो औपशमिक आदि भाव है और पारिणामिक आदि भाव है उसमें से भव्यत्व भाव के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भव्यत्व अभव्यत्व में से जो भव्य जीव होने का मोक्ष होगा, तो जब मोक्ष होगा तो न भव्य न अभव्य, फिर अकेला जीवत्व भर शेष रहेगा। आशा यह है कि औपशमिक भाव सयोपशमिक भाव औदयिक भाव ये तो पूरी तरह से नष्ट हो गए, पारिणामिक भाव में भी जो अभव्यत्व है वो तो मोक्षगामी है ही, और भव्य जीव है वो ही जाएगा, तो भव्यपना भी उसका अब आवश्यक ही नहीं है, अकेला जीवत तो जो है मुक्त अवस्था में रह गया, बाकी समस्त भावों का भी अभाव हो गया। अन्यत्र केवल समय तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्व्या क्षायिक भाव शेष रह जाता है, वो क्षायिक भाव कौन कौन से रह जाते हैं, तो क्षायिक समित्व और क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और सिद्धत्व, ये सब जो है मुक्त जीवों के, इसके अलावा अन्य भावों का अभाव हो जाता है। चतुष्टय की प्राप्ति तदनंतर मूर्धन गत चत्यालोकांतर, समस्त कर्मों के छूटने के बाद जीव कहाँ जाता है? तो कहते लोक के अंत तक ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने का कारण क्या है? तो कहते पूर्व प्रयोगा असंगत्वा बंधक छेदा तथा गति प्रणाम। पहले का संस्कार होने की वजह से, कर्म के भार से हटा हो जाने से, या कर्म के बंधन के कट जाने से, या ऊपर जाने का स्वभाव होने से इस तरह होता है। तो कहते इसका दृष्टांत दे, तो दृष्टांत दे रहे आबुद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभ हुए लाभ देरंग बीज बदगनी शिखा वच्च। अब जो पूर्व प्रयोग के लिए उदाहरण दे रहे हैं वो है कुमार के हाथ में जो चाक घूमता रहता है, तो एक बार वो उसको घुमा देता है तो छोड़ भी देता है, बहुत देर तक घूमता रहता है। इसी तरह से जो है पूर्व संस्कार की वजह से ये जो संसारी जीवन मुक्ति के लिए बार बार प्रयत्न करता है कब मुक्त हो जाओ, उस भावना से प्रेरित होने से पूर्व संसार की वजह से मुक्त होने पर गमन करता है। फिर कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी के भार से कभी भी कोई तुम्बी है वो भी चीज है, उसमें मिट्टी आपने लेप दी तो पानी में डूब जाती है, लेकिन मिट्टी जैसे हटती है तो ऊपर आ जाती है। इसी तरह कर्मों के भार से हल्का हो जाने से भी लोक के अग्रभाग की तरफ चला जाता। एक एरंड का बीज होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि एरंड का बीज जैसे फूटता है तो उसमें चटक करके ऊपर उड़ जाता है, इसी तरह कर्म बंध से जैसे ही आत्मा मुक्त होता है तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और फिर कहते हैं कि स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर ऊपर की तरफ जाने का है, ऐसे जीव का स्वभाव भी जो है मुक्त होने पर ऊपर की तरफ जाने